नमस्कार मित्रों, TYBA उर्दू में जो अपना कोर्स है अदब-ए-उस्ताद का अदब, उसमें इंशाइया और इंशाइये के बारे में हम अधिक जानकारी प्रोफेसर खान हसने नकीब साहब से कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि खान साहब एक बहुत बड़े कवि भी है, साहित्यिक भी है, लेकिन उनका ये रवैया रहा है कि उर्दू का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इस तरह से वो मालूमात उसकी देना चाहते हैं कि बिल्कुल, यानी जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जैसे बातें करते हैं, बोलते हैं, उसी अंदाज में वो उनसे उनका परिचय देना चाहते हैं। वो इसलिए कि किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि ये मेरे जानने या मेरे समझ के बाहर है। जब ऐसी भावना पैदा होती है तब आपको मालूम है कि किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि हमने अभी एक सर से बात की तो खान हसने नकीब साहब का ये बहुत बड़ा, यानी मैं क्वालिटी कहूँगा उनकी, को वो जिस तरह से बात करते हैं वो बात इस तरह से करते हैं कि कितना भी, यानी छोटा हो या पढ़ा लिखा वाला आदमी हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाला आदमी हो, उसके समझ में एक एक शब्द इस तरह से आता है कि वो दिल को छू जाता है। और जब कोई बात दिल को छू जाती है तब आपको मालूम है कि वो अच्छी तरह से अपने जहन में आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि खान हसने नकीब साहब गुलाम नबी आज़ाद कॉलेज पुसद में उर्दू के हेड है, वो बहुत सारे विद्यापीठ जो है अपने यूनिवर्सिटीज़ उसमें जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ रहती है उसमें भी वो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू का सिलेबस या पाठ्यक्रम बनता है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार सर, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना वक्त दिया। और जिस तरह से अपनी बातें चल रही है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कभी खत्म ही ना हो, कि जिस तरह से आप हर एक बात को हमें समझा रहे हैं इसका फायदा हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से होगा। सर, हम इंशाइया की बात कर रहे थे और जैसे कि आपने कहा कि इंशाइया में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत इसलिए है कि जो हमारे आसपास घटनाएं चल रही है उस पर टिक्का टिप्पणी करने वाला, उसका कमेंट करने वाला इंशाइया निगार होता है, जो अपने को एक आईना दिखाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से जिंदगी में हमको आगे चल के सामना करना है। तो इंशाइया निगार मैं तो कहूंगा कि ये एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे मैं उनको देखना चाहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर,
कि वो एक सोशल रिफॉर्मर है जो अपने को पल पल में दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से नहीं चलना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा मजे तो लगता है कि हर एक, यानी किसी भी तरह का, जैसे कि नॉवेल में कहा या अफसाने में कहा, तो उससे ये या उसके बदले बहुत बड़ा ताकतवर ऐसा ये एक प्रकार है। और ये इंशाइया सच में, तो अगर हम देखें तो इंशाइया हर एक के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि अपने आप में क्या सुधार लाना चाहिए इसके तो कम से कम उसको मालूमात होगी। और मेरा ये विश्वास है कि वो जरूर इसके बारे में प्रयास करेगा।
बिल्कुल
सर, जैसे कि अपने पिछले जो अपनी चर्चा हुई थी उसमें आपने इंशाइया के जो टेक्निकल या जिसे आप कहेंगे कि उसके मायने क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आपने बताया। कुछ इंशाइया निगारों के बारे में भी आपने अच्छी जानकारी दी हमको, लेकिन ऐसे और कुछ इंशाइया है जिसके बारे में हम और आपसे जानना चाहेंगे, जिसमें एक है अरहर का खेत
जी।
तो अरहर का खेत ये इंशाइया जो है ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत काफी मशहूर हुआ है
जी,
ये
जी।
तो इस अरहर के खेत के बारे में जरा हमको बताइए।
देखिए सर, एक अरहर के खेत पर बात करने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है। इंशाइये का मकसद यह है कि वो पढ़ने वाले के दिल में एक गुदगुदी, जिसे कहते हैं कि चलिए इधर बगल में हाथ लगा दिया तो आप हंस दिए, एक गुदगुदी पैदा हो जाए। एक इंशाइया निगार का फन यही होता है, वो चाहता है ये कि वो पढ़ने वाले के जौक को गुदगुदाए, ताकि पढ़ने वाला जब उठे वो खत्म करके, जब आखिरी लाइन इंशाइये की खत्म हो जाए तो वो हंसते हुए उठे।
सही बात है।
और मैं भी जब इंशाइये पे बात कर रहा हूं, तो चूंकि मुझे भी बहुत सारे इंशाइये बात करते करते याद आ रहे हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे मैं मुसलसल, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। एक बात मुझे इंशाइये से कि इंशाइया इंसानी जिंदगी में कैसे आता है, अरहर के खेत पर हम बात कर रहे हैं, उससे एक बात याद आ रही है मुझे कि इंशाइया बनता कैसे। जिंदगी की सच्चाइयों पर इंशाइया बनता है, लिखता है लिखने वाला। मसोलिनी का नाम आपने सुना है कि इटली का डिक्टेटर था
सही
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में। तो उस वक्त फिल्मों का इब्तदाई दौर था, गूंगी फिल्में हुआ करती थी, साइलेंट
बराबर
फिल्म्स। तो उसके मुल्क में यानी इटली में जब फिल्में थिएटर में दिखाई जाती थी, तो सबसे जैसे हमारे यहाँ फिल्म डिवीजन की भेंट ऐसा दिखाया जाता है, तो वैसे मसोलिनी की तस्वीर आती थी स्क्रीन पे और सबको खड़े हो जाना पड़ता था एकदम टाइट उसका सल्यूट देने के लिए। तो एक हॉल में सब बैठे हुए हैं और जैसी मसोलिनी की तस्वीर आई तो सब खड़े हो गए।
सब खड़े हुए
एक आदमी बैठे रहा, तो अब चूंकि डर था ना उसका, क्योंकि उसकी जो फौज थी, उसके आदमी इधर उधर जासूस थे, जो नहीं इज्जत करता वो समझ जाते थे कि ये इसका
बराबर
मुखालिफ है। तो उसने बाजू जो बैठा हुआ था उसने उससे कहा कि अरे जल्दी खड़े हो जाओ, मुसोलिनी की तस्वीर आई। तो उसने देखे कि अरे जल्दी खड़े हो जाओ, उस तस्वीर आई तो वो बैठे रहा। तो उसने कहा कि अरे उस कमीने के बारे में हमारे भी ये ख्याल आते, मगर मजबूरी में खड़े रहना पड़ता। जो पलट कर देखा तो वो मसूली नहीं बैठा
ओह
हुआ था। तो ये जो चीज है, ये यहां से इंशाइया पैदा होता
इंशाइया
है
पैदा होता है। सही बात है।
कि दो चीजें इसमें, दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि हमको ये लगा कि कहीं हंसने जैसी बात आई, वाकई ऐसा है, और कहीं ये कि भी हमने सबक सीखा कि जब दौर एक डिक्टेटर का आता है तो पब्लिक को किस तरह से मजबूर हो जाना पड़ता है।
सही बात
ये
है।
दो चीजें, एक मैसेज प्लस
सही बात है।
एक पैगाम, और उसके साथ साथ एक लाइट मूड। तो ये दोनों चीजें, दो अपीलिंग जो फैक्टर्स हैं उसके, जो अपील करते हैं इंसानी
सही बात है।
जौक को, उसकी फितरत को, वो अपील कर रहे हैं उसके मिजाज को, ये इसमें इंशाइये में होता है। अरहर का खेत भी जो है वो यही इसी इसी बात को, जो मैंने आपको तमीद बांधी है, पस मंजर मैंने जो बांधा है उसका, वो इसी को वाजे कर रहा है। अरहर का खेत, आप जानते हैं कि अरहर जिसको हमारे यहाँ शायद तुअर कहा जाता
तो
है ना, तुअर ही कहते हैं ना।
सही बात। हर
तो ये
बार
तुअर की
हर बार हर
हरभरा, अच्छा चने
बार
का, अच्छा
हाँ चलेगा।
हाँ, तो इसकी एक खासियत चने का खेत होता है। और चूंकि खेत में, आज के खेतों में दो काम लिए जाते हैं, इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी ने यही बात बयान किया है कि खेत के फायदे क्या क्या हैं। तो आज जो हमारे यहां का सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है, देखिए सर, ये एक बड़ा अच्छा अरहर का खेत पर बात करना मैं चाह रहा हूं, इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा रुककर, कि अरहर का खेत, उन्होंने खेत को एक सिंबल बनाया है कि खेत का इस्तेमाल हम काहे के लिए कर रहे हैं। खेतों का इस्तेमाल हमारे यहां पे फसलें उगाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक दूसरा इस्तेमाल जो किया जाता है वो सुबह सुबह प्रातः विधि के लिए किया जाता है, और उससे क्या क्या नुकसान होते हैं इस अरहर के खेत में वो बताया गया है। आज जाकर उन्होंने, 1970 में उनका इंतकाल हुआ, कब की बात है ये, और उन्होंने कब लिखा होगा वो, यानी आज से 50-60 साल पहले उन्होंने लिखा उसको, लेकिन आज 50-60 साल के बाद भी अगर हमारे देश में, अगर हमारे मुल्क में सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही है, तो हम सोचें कि हम कहां जा रहे हैं,
कहां जा रहे
कि हम
हैं।
एक अपनी एक मामूली सी आदत नहीं बदल सके। अब स्टेट गवर्नमेंट, रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सारी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हमारी वो आदत टूट जाए, हमको घर में बना बना कर दे रही है, जिसको हम बैतुल खुला कहते हैं,
सही बात
वो बना बना कर दे रही, पैसा दे रही है गवर्नमेंट तो। लेकिन ये है कि भी एक तो उस सूरत हाल को उन्होंने बयान किया है कि ये अरहर के खेत में बच्चे, बड़े, छोटे, जवान, बूढ़े, औरतें सब अपने कामों से फारिग होने के लिए जाती हैं। तो अब ये जरूरत से फारिग होने के लिए खेत का इस्तेमाल, एक फिर ये अरहर के खेत में और क्या करते हैं, अब वहां बैठे तो मीटिंग वहां पर हो रही है, वहां पर सारे जहां के इधर उधर की जितने भी खबरें हैं वो वहां जाकर वो सर्कुलेट हो रही हैं, बातें हो रही है उसके ऊपर, पड़ोस में क्या हुआ, वो लड़की किससे मिली, वो लड़के ने क्या कहा, इसने क्या किया, वो सारी की सारी न्यूज़ें लड़कियां औरतें आपस में बैठी हैं चार पांच और उस पर डिस्कशन हो रहा है। ये इसके लिए तो एक कड़ा तंज किया है उन्होंने एक तंज किया है कि कितनी चीजें, एक तो ये कि अरहर के खेत को उन्होंने एक हमारी जो कौमी आदत है पूरे कौम की, उस आदत को उन्होंने बयान किया है। आपको जानकर हैरत होगी कि मैं ये समझता था कि ये आदत जो है सिर्फ महाराष्ट्र वालों की है क्या। मैं दिल्ली गया था सेमिनार में जनवरी में इस साल, तो वहां पर पता चला ये तो वहां भी है। और वहां फिर जब सेमिनार में पूरे इंडिया के लोग आए थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अरे साहब ये तो सब जगह है, बताइए। अब आज जाकर मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूं तो इन अखबार, देखिए अब ये तो हंसी मजाक की बात हो रही है कि वो इंशाइया है, लेकिन वो कितना सीरियस, उसकी वजह से कितना सीरियस क्राइम्स पैदा हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिना बिल जबर के केसेस, रेप्स के केसेस कितने ऊंच पर हैं, कितने बढ़ गए हैं, किस वजह से। तो जहां पर एक तरफ हमारी बेअंदा धुन मगरबी तहजीब की तकलीद हम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, नकाली कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमारे इस तरह के मामला, तो बताया मैंने कल ही रिपोर्ट पढ़ी है, वो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अभी मुल्क में हिंदुस्तान भर में जो रेप्स के केसेस हो रहे हैं उसमें 50% के आसपास, 50% से ज्यादा मामलात वहां हो रहे हैं जहां खेतों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है,
इस तरह का इस्तेमाल। सही बात।
तो उन्होंने एक और चीज, उन्होंने जो बड़ी बात कही है उसमें अरहर के खेत में, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी एक बहुत बड़े तनकीद निगार भी थे, नकाद भी थे वो, तो उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जिस तरह से हमारी असेंबली होती है उस तरह से ये खेत भी होते हैं, क्योंकि वही काम जो असेंबली में होता है वो यहां भी होता है। जो लोग अरहर के खेत में दो कामों से जाते हैं उन्होंने कहा, और हमारे एमपीज भी दो कामों से जाते हैं, एक जरूरत से फारिग होना, तो दोनों भी अरहर के खेत में जो डब्बा उठा के जाने वाला है वो भी जरूरत से फारिग होता, और वो वहां पार्लियामेंट में जा रहा वो भी अपनी जरूरत से फारिग होता, और दूसरा यह है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना, वो जा रहा है तो वो पूरे माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, गिलाजत फैला रहा है वो, और पार्लियामेंट में भी एमपी जो जा रहे हैं या असेंबलीज में जो एमएलए जा रहे हैं वो भी पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दो चीजों को कंपेयर किया उन्होंने, तो और बहुत सारी बातें हैं जिसको तफसील में अगर आप पढ़ें तो एक हर इंशाइया निगार ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने अलग अंदाज में, किसी में जो कंटेंट है वो ज्यादा है, किसी में लाफ्टर जिसको कहेंगे कहकहे ज्यादा है, हंसी ज्यादा है, किसी में हर एक डोज रहता है, किसी को जब हम चाय बनाते हैं तो जिसके अंदर किसी को शकर कम अच्छी लगती है, किसी को ज्यादा अच्छी लगती है, तो इस तरह से हर चीज का
सही रहता है। सही बात है। तो अरहर के खेत के बारे में जो आपने बताया वो यानी वो उसका मतलब वही है कि किस तरह से हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और किस तरह से जैसे कि गवर्नमेंट अपने लिए कुछ कर रहा है तो उसका आगे चल के हमने फायदा लेना चाहिए, वो फायदा हम लेते नहीं और उल्टा गवर्नमेंट को कोसते कि उन्होंने कुछ किया नहीं। सर ये दूसरा जो इंशाया है पितरस बुखारी जी का
जी।
कुत्ते उसका क्या मोज क्या है उसका?
पितरस बुखारी का मैं मुख्तसर तारुफ करवा देता हूं कि पितरस बुखारी जो है अहमद शाह उनका नाम था, अहमद शाह पितरस बुखारी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बड़े सिफारती ओहदे पर थे। इनकी खास बात यह है कि अमेरिका ने इनको मांग लिया था कि ये आदमी हमको दो, इतने जहीन आदमी थे, और इनके मुश्किल से कुछ 15-17 इंशाइये हैं, पूरी लाइफ की जो राइटिंग है उनकी वो एक छोटी सी किताब है, पितरस के मजामीन और पितरस के खतूत, ये दो बस छोटी छोटी किताब, ये पूरे बस उतने ही लिटरेचर के ऊपर वो आज अदब में जिंदा है। पितरस बुखारी का एक जो बहुत बड़ा इंशाइया है मेरी नजर में वो है मुरीदपुर का पीर,
मुरीदपुर का पीर,
तो वो गांव का नाम है मुरीदपुर।
अच्छा।
और पूरे गांव वाले जो है इनको पीर बना लेते अपना गुरु। तो वो जो है वो आज भी जब मैं अकेले में बैठता हूं तो मुझे वो जुमले याद करके हंसी आती है। अब आप सोचिए कि वो उसमें कितना क्रिएटिव फोर्स होगा, तखलीकी उसमें ताकत सलाहियत कितनी होगी कि लिखने वाले ने लिख दिया और मर गया, लेकिन उसका ने जो लिखा वो कभी नहीं मरा, वो अमर हो गया।
वो अमर हो गया, सही बात।
उसके जुमले अमर हो गए कि आज भी जो पढ़ रहा है वो उसको मजा ले रहा है उसको पढ़कर, और कुछ सीख रहा है। एक उनकी साइकिल पर है और बहुत सारे उनके वो हैं पढ़े जाएं। एक ऐसे ही ये कुत्ते हैं, एक तो उन्होंने इस इंशाइये में कुत्तों की किस्में बयान की।
अच्छा।
बल्कि कुत्तों की किस्मों से ज्यादा कुत्ते क्या करते हैं उसको उन्होंने बयान किया है। अब देखिए उन्होंने कि उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अचानक एक तरफ से एक कुत्ते ने पहला मिसरा कहा, दूसरे कुत्ते ने उधर से आवाज निकालकर वो एक शेर मुकम्मल कर दिया। जब एक शेर पूरा हो गया तो चार पांच कुत्ते इधर उधर से निकल कर आए और उन्होंने एक एक शेर एक एक ने एक एक मिसरा लगाकर गजल पूरी कर दी। और उसके बाद जो मुशायरा शुरू हुआ तो फिर पूरे मोहल्ले को कान पड़े आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये यहां से उस इंशाइये की शुरुआत है। तो ये असल में ये आर्ट है इंशाइये का, कि इंशाइये निगार कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसने उस कुछ मुशायरे थे कुत्ते जो चीखते हैं जो भौंकते हैं और आपस में लड़ते हैं और जो शोर मचाते हैं, तो उसको उन्होंने कंपेयर किया मुशायरों के हुल्लड़बाजी से। तो ये एक उसके अंदर उन्होंने उसको वो पैदा किया है, ह्यूमर जिसको हम कहते हैं, तंजो मिजा पैदा किया है। तो फिर अलग अलग किस्म के कुत्ते हैं, छोटे बड़े कुत्ते, हिंदुस्तानी कुत्ते, फिर हिंदुस्तानी कुत्तों की आदत क्या होती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वहां के एक और कंपैरिजन उन्होंने किया कि बाहर के कुत्ते कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के कुत्ते एकदम शरीफ और बिल्कुल अप टू डेट और बिल्कुल मुहज़्ज़िब, के अगर उनको कुछ आवाज भी करना है तो वो ऐसा करेंगे, और हमारे यहाँ के तो जब तक पूरा हंगामा ना कर दें तब तक। उन्होंने कहा कि वहां के कुत्ते वेस्ट के वो कुत्ते, अगर उन कुत्तों को आप एक घर में बंधे हुए हैं और आप अगर वहां चले जा रहे हैं तो पहले एकदम आपके नजदीक आएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, छोटा सा ऐसा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आप और दो चार कदम तो फिर वो थोड़ा सा वहां जाएंगे आपके पास। और हमारे यहाँ का कुत्ता जैसी गेट के पास गए कि वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है, तो उन्होंने कहना ये चाहा कि जिस अंदाज से कुत्तों को उन्होंने एक सिंबल बनाया है, और कुत्तों की जो फितरत है तो वो उससे ही उन्होंने कहना चाहा है कि ये फितरत में और इंसानी फितरत में आज क्या फर्क रह गया है। तो वही कौमें तरक्की कर सकती हैं जिन कौमों में आदत और अतवार बदलते हैं। जैसे उन्होंने कुत्तों की मिसाल ली और कंपेयर किया, तमसील मुवाजना किया कि हिंदुस्तानी कुत्ते और बाहर के कुत्ते, कुत्ते कुत्ते हैं
बरो,
आखिर कुत्ता कुत्ता ही होता है कहीं का भी हो। लेकिन नहीं, अगर आप वहां बाहर का कुत्ता है उसको आपने आवाज दे दी टॉमी तो वो फटाक से आ जाएगा। हमारे यहाँ का चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो काम करके आता। तो ये एक उन्होंने इसको सिंबॉलिक अलामत ही बनाया है, एक अलामत बनाया है इसको कि भी हमारे मुल्क में लोगों का मिजाज कैसा हो गया है।
बराबर।
तो हम उनसे अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखते हैं? अगर हम मगरबी तहजीब से ओरियानियत अगर सीख रहे हैं तो हम उनसे तहजीब और ये जो कुछ भी ये बड़ी चीजें हैं ये क्यों नहीं सीखते?
सही बात है।
साइंसी तरक्की है, मिजाज का एक बड़ापन है, वो नहीं सीख रहे हैं हम? मिजाज की कुशादगी है, दिल की कुशादगी है, वो नहीं सीख रहे हैं? तो जो चीज नहीं लेना चाहिए हम उनसे वो ले रहे हैं, जो चीज लेना चाहिए वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं,
वो बिल्कुल नहीं ले रहे। सर, जैसे कि आपने कहा कि कुत्तों के इंशाइये में बहुत बड़ी बात कही है कि हम फॉरेन से ऐसी चीजें लेते हैं कि जो हमने नहीं लेनी चाहिए, जिस तरह से उनकी इफिशिएंसी है, सिंसियरिटी है,
बिल्कुल बिल्कुल,
वो शिक्षा के प्रति उनका जो प्यार है वो हम नहीं लेते,
नहीं लेते हैं।
और उनकी जो फैशन है, उनका जो कल्चर है, पॉप कल्चर है, मानो तो वो तुरंत हम यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। ये कुत्ते के जरिए उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है। और जैसे कि अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना चल रहा है
जी, जी, जी।
तो हमने जो तौर तरीके बोलने के चलने के जो अपने ढंग है वो भी मेरे ख्याल से बहुत इस पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है,
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ,
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और जैसे कि अभी आईटी का जमाना है तो इंटरनेट है या कम्युनिकेशन है तो हम उनके तौर तरीके सीखने का जो जरिया है वो भी बहुत फास्ट हो गया है, बहुत जल्दी हम सीख रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो तालीम है हमारा जो कल्चर है उसका भी हमने अच्छी तरह से आदर करना चाहिए और उनकी जो अच्छी चीज़ है वो हम जरूर सीखे लेकिन जो बुरी है उस पर तौबा कर ले। तो ये इंशाइये के कुत्ते इंशाइये में
यूँ भी सर थोड़ा सा मैं रोक कर आपको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को भी कि वो चीज ये तो वो चीजें हैं कि धीरे धीरे वो खुद भी छोड़ रहे हैं उसको।
सही बात,
अब हमको आदत लगाकर खुद छोड़ने में चले तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस चीज को वो आज छोड़ रहे हैं आप अपना ही क्यों रहे हैं उसको।
सही बात है, सही बात है, सही बात है।
तो इसको आप बिल्कुल वो जो अच्छी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर वो तरक्की जिसकी बुनियाद, देखिए सर आज वेस्ट की अगर हम देखें तो आज उनके यहां पर खानदानी निजाम बिल्कुल तबाह हो गया है।
सही बात है,
उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो जो हमारी तहजीब थी हम वो सारे लोग जो उनकी तहजीब को अपनाते हैं आज हमारे भी खानदानी निजाम तबाह हो गए। तो जिन हम बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड मॉडर्न
माँ बाप बोझ बन गए, अभी
माँ बाप बोझ बन गए जिनकी वजह से हम सोचते थे कि माँ के कदमों तले जन्नत है,
जन्नत है।
तो अब वो ये कि भी वो माँ तो अब उसकी जगह बीवी ने ले ली।
सही बात,
अब हम सोचते हैं कि बीवी कदमों तले जन्नत है।
सही बात,
कितने अफसोस की बात है,
बहुत यानी ये बहुत बदलाव जो आया है बहुत बुरा बदलाव है। सही बात है, सही बात। तो ये जैसे कि अभी कुत्ते में आपने देखा कि एक फॉरेन कल्चर और इंडियन कल्चर का उनका जो उन्हें जिस तरह से उनकी है कुत्ते को जरिए वे बहुत ही अच्छे आगे चल के अपने वतन में सब कुछ है प्यारे
जी, जी।
इस इंशाया का होना बहुत ही लाजमी है क्योंकि कन्हैयालाल कपूर जी का ये जो इंशाया है वो एक देश उसका टाइटल पढ़ते ऐसा लगता है कि देश प्रेम से प्रेरित है भारित है। तो इसके बारे में जरा बताइए।
देखिए इंशाइये का जो बार बार सर भी आप भी बता रहे हैं और मैं भी जो बात बार बार जो बात कर रहा हूं तो चूंकि उसका मकसद ही यह है कि इंशाया निगार किसी एक बात पर टीका करता है। मैंने एक नाम लिया अपने हमारे इलाके अपने इलाके के एक इंशाया निगार जिनका ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक में भी एक उनका इंशाया है लेटर पैड इस उनवान से। तो आजकल सोसाइटीज रजिस्टर करवाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, उन्होंने उस पर लिखा है कि अब हर कोई आसानी से एक सोसाइटी रजिस्टर करवा लेता है 1500-1700 रुपए 2000 रुपए लगते हैं और उसके बाद एक सबसे पहला काम जो करता है वो लेटर पैड छपा लेता है। तो उन्होंने जो एक जुमला मुझे उसका याद आ रहा है शकील एजाज का, तो वो जुमला यूं है कि इस अंजुमन के इस सोसाइटी के दो मेंबर्स हैं, एक ये और दूसरे भी ये खुद ही है। मतलब दूसरा कोई वही अकेले दो
दो ही सही बात है, सही बात है।
एक उनके उनके पिताजी जो हैं वो बड़े कवि थे तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि लोग खुश हैं उसे दे दे के इबादत का फरेब, लोग खुश हैं उसे दे दे के इबादत का फरेब, वो मगर खूब समझता है खुदा है वो भी।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो ये कहने का मतलब ये है कि भी एक मैंने एक मिसाल ये दी कि भी एक जुमले को किस तरीके से उसका कटाक्ष जिसको कहते हैं हम तंज कड़वा तंज के लिए इस्तेमाल करता है इंशाया निगार। तो अब यहां पर इस कन्हैया लाल कपूर के इस इंशाया में भी कि अपने
अपने वतन में
सब कुछ है प्यारे। तो अब अपना वतन, जाहिर सी बात है कि वतन तो एक ऐसी चीज है कि वतन का नाम सुनते से हमारे इसमें एक जज्बात हमारे वतन से। सर देखिए एक बात मैं एक वतन से के ताल्लुक से एक बात मैं मेरे जहन में हमेशा आती है वो आपके साथ आज मैं बांटता हूं कि वतन कुछ लोग कहते हैं कि भाई वतन इसका ये उसका वो, मैं ये कहता हूं कि वतन के लिए आपको हिंदुस्तान के जैसे बड़ी यूनिट इकाई की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहां बैठा हूं आप यहां बैठे हैं लेकिन आपका जो वतन होगा ना वो छोटा सा देहात, मेरा वतन वो छोटा सा देहात आज भी उसकी याद आती है जबकि मैं इंडिया में हूं, मैं उसी स्टेट में उसी रियासत में बैठा हुआ हूं है ना, सब कुछ वही है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर हूं, अगर मैं जिले के मुकाम पे हूं और यहां से 7 किलोमीटर दूर भी मेरा देहात होगा ना, तो मैं वो देहात को भूलूंगा नहीं, मैं वहीं जाऊंगा।
सही बात है, तो जड़े वहां पे,
वहां से हल्ले गुजरे। अब मैं यहां पर आया हूं काम से, अब मैं वापस, मुझे फिक्र रहेगी कि कब मैं अपने वतन वापस जाता हूं।
सही,
तो वतन चीज ही ऐसी है सर कि सब कुछ मुझे अजीज है लेकिन वतन के बाद।
क्या बात है, क्या बात है।
तो इस वतन में, इस वतन में जब मैं देखता हूं कि मेरा वतन कैसा होना चाहिए, तो सिर्फ राष्ट्रगीत गा लेने से मेरा वतन वैसा नहीं हो जाएगा।
सही,
गंगा अगर मेरी मैया है तो गंगा मैया, ऐसी गंगा मैया मेरी मैया नहीं हो सकती जिसके अंदर इतनी गंदगी आपने डाल दी है कि पूरा एनवायरमेंटल डिजास्टर्स उसके अंदर वो हो रहे हैं।
सही बात,
हमारा काम है कि उसकी गंदगी साफ करें।
साफ करें,
फेंक रहे क्यों वहां पर आप? सारी इंडस्ट्रीज का उसके अंदर कचरा जा रहा है।
सही बात,
जब आप वहां उसमें एक स्नान करके अगर आप पवित्र हो जाते हैं तो उसको इतना गंदा करें क्या? आप जब उसमें से नहाकर निकले तो पूरे बदन के ऊपर आप एसिड लेकर निकले।
सही बात,
ये देश नहीं है, ये देश नहीं हो सकता है, मेरा वतन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को कन्हैया लाल कपूर ने महसूस किया कि मेरा देश क्या है, मेरा वतन क्या है। तो अपने मूल वतन में सब कुछ है प्यारे, ये उन्होंने बताया। अब वो उसका उन्मान देखकर हम लोग सोचेंगे यार देखो कितने देशभक्ति से पुर इसके वो जैसे, लेकिन उन्होंने कहा जो अंदर आप पढ़ेंगे तो डब्बा जो है उसका जो लेबल होता है तो लेबल ये है, लेकिन अंदर जब आप डब्बा खोलेंगे तो आपको और मजा आएगा कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अपने वतन में क्या है। अपने वतन में उन्होंने कहा कि निफाक यानी फाड़, तकसीम, इत्तेहाद नहीं है, जुड़ाव नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, बंटवारा है अपने में। हमारे इसमें जातों का बंटवारा है, हमारे यहां जुबानों का बंटवारा है, हमारे यहां मजहबों का बंटवारा है। एक होने के लिए हम किसी बहाने की तलाश नहीं करते, तलाश करते हैं दूर होने की, अलग होने की तलाश, उसके लिए बहाने तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मेरे वतन में सब कुछ है प्यारे, क्या है और विलाजत है, उन्होंने वो लिखा है। मेरे वतन में भूख है, मेरे वतन में बेरोजगारी है, सब कुछ है, ये कहा है उन्होंने। अब हम पढ़कर समझ रहे हैं कि वो बहुत उन्होंने, लेकिन ये सब इंशाया निगारों का मत, उसका मेन अहम जो है काम वो यही होता है कि वो उस पर जो हालात हैं, जो सच्चाइयां हैं, वो उसको बिल्कुल हंसी हंसी के पैराए में उसको बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे वतन में मजहबी जुनून है, मेरे वतन में दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के फसादात होते हैं, मेरे वतन में गंदगी फैली हुई है, मेरे वतन में होटलिंग की आदत फैली हुई है। और उन्होंने ये सारी चीजें, उन्होंने कहा कि मेरे वतन में शायरों की बेकदरी है, मेरे वतन में अदीबों की जो राइटर्स हैं उनकी बेकदरी है,
बेकदरी है, सही बात है।
मेरे वतन में अदीब जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा भूखा कंगाल होगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कंपेयर किया कि बाहर के एक मुल्क में जो अदीब होता है, लिखने वाला होता है, वो अमीर होता है, और मेरे वतन में जो जितना बड़ा, जितना ज्यादा गरीब है उतना बड़ा
राइटर है,
ऐसा समझा जाता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आज हमारे यहां शायरों की और अदीबों की कोई कदर नहीं, जबकि वो समाज को जगाने का काम करते हैं, माशरती बेदारी का काम करते हैं।
सही बात।
तो उनके साथ अगर इस तरह का सुलूक किया जाए कि शायर को अगर अपने एक थैली उठाकर राशन की दुकान पे खड़े रहना पड़े 4 घंटे और फिर भी राशन ना मिले, दुकान बंद करके चला जाए राशन वाला, तो वो शायर क्या देश के सुधारने का सोच सकेगा, वो क्या लिख सकेगा शायरी वो अच्छी?
सही बात।
तो उसके लिए तो उसको ये है कि भी आज भी सर चलते चलते आप हमेशा, आपकी एक खास बात यह है जो मुझे अच्छी लगती है कि भी आप हर टॉपिक को आज के मंजर से जोड़ देते हैं। तो अब मैं इस टॉपिक को, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि करण मंजर से जोड़ दो कि आज यूके में ये अदीबों का यह हाल है, वहां ऐसी कदर होती है कि अगर एक प्रेस को मालूम, पब्लिशिंग कंपनी को मालूम हो जाए कि आप राइटर हैं, साहब आप क्या लिखेंगे बताइए, तो वो ऑटोबायोग्राफी लिखेगा या कोई साइंस फिक्शन लिखेगा, तो कहते कि अच्छा बताइए कि आप कितने वक्त में पूरा कर लेंगे, तो कहा कि 1 साल में, ठीक है कॉन्टेक्ट उसको, तब के तब, अभी लिखा नहीं, एक कागज भी उसने संभाला नहीं, एक बुक जाकर खरीदा भी नहीं उसने स्टेशनरी की, पेन भी नहीं खरीदा, और तभी उसके हाथ में चेक आ जाता है कि ये आपको £50,000 ये एडवांस, जब आप लिख लेंगे तो आप किसी दूसरे कंपनी को देंगे, हम ही को देंगे, चलिए। तो वो लिखने के पहले ही अमीर बन जाता है, और हम लिखने के बाद तो और गरीब बन जाते हैं।
यानी कन्हैया लाल जी के नजरिए से अपने वतन में सब कुछ है,
जो
सब कुछ है, जो हालांकि नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी एक बात कही है कि भी अपने वतन में नौजवान अकेली लड़की जो है वो अगर चली जाए तो वो शरीफ नहीं कहलाती। ये जो कॉमन टेंडेंसी जो है, उन्होंने कहा कि हम ये क्यों नहीं बदलते,
लड़के लड़कियों में भेदभाव जो होता है,
भेदभाव भी होता है, और ये कि अगर अकेली लड़की अगर चली जाए बाहर दिखाई दे तो समझा जाता है कि ये शरीफ नहीं।
सही बात है।
तो हम लड़कियों की आजादी को कब तक कुचलते रहेंगे?
सही बात है,
उन्होंने ये कहा। तो ये सारी चीजें जो हमारी विषमताएं जिसको हम कहते हैं सामाजिक विषमताएं, यानी सामाजिक खराबियां, तो इन सबके ऊपर उन्होंने कहा कि ये सारी खराबियां हमारे समाज में हैं। तो जब कोई राइटर, चाहे वो अफसाने के जरिए या नॉवेल के जरिए, शायरी के जरिए या फिर इंशाइये के जरिए, जब कोई राइटर किसी बात पर तंस करता है, उसकी बुराइयों को सामने लाता है, तो उसका मकसद ये नहीं रहता है कि वो उसको बुरा कर रहा है या बुरा कह रहा है या उसको बुरा मानता है। वो बुराई को बुरा मानता है, उस चीज को बुरा नहीं मानता, और वो ये चाहता है कि ये बुराई ना हो, क्योंकि वो उससे प्यार करता है।
सही बात है, सही बात है।
मैं अगर ये बोलता हूँ कि मेरा वतन यार ये ऐसा इसमें ये, तो मैं इसलिए नहीं कि मेरा वतन खराब है, मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा वतन बहुत अच्छा है, उसमें ये धब्बा कहाँ से लग गया।
सही बात है, सही बात।
तो ये इसको दो निशाया निकाल,
आपको सुधारने की जरूरत है,
ये करता है
सर। इसके आगे कृष्णचंद जी का रोना जो इंशाइया है,
जी जी,
उसका जिक्र होना बहुत ही लाजमी है, तो इसके बारे में जरा बताइए आप।
कृष्णचंद्र जो हैं वो एक बहुत बड़े अदीब थे, अफसाना निगारों के भी सफ में उनका पहला नाम आता है कृष्णचंद्र का, और इंशाइया निगारों में भी उनका उस सफ में भी नाम लिया जाता है उनका। कृष्णचंद्र के इसमें एक गधे की सरगुजश्त, एक उनका बड़ा अच्छा अफसाना है। अफसाने भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छे उनके पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कृष्णचंद्र का एक अफसाना जो है, अगर आप भी पढ़ें, मेरे इस जो लोग सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर वो भी हासिल करके पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे आठवीं या नवीं के कोर्स में था वो अफसाना, और उस अफसाने में जो को बताया गया था वो आज भी मेरे दिल पर नक्श है, आज भी मेरे दिल पर। जामुन का पेड़ उस अफसाने का नाम है। तो जामुन का पेड़ एक गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, और वो बोलता है कि मुझे निकालो, और वो जामुन का पेड़ एक ऑफिस में रहता है, कलेक्टर ऑफिस में या किसी ऑफिस में। अब ये होता है कि सारे के सारे बोलते हैं अरे ये जामुन का पेड़ हम नहीं हटा सकते, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता, तो वो सब उसी पे लड़ते। एक दिन गुजर जाता कि हमारे पास, फिर दूसरे डिपार्टमेंट बोलते नहीं नहीं ये हॉर्टिकल्चर कल्चर में आता है, ये बोलते ये एग्रीकल्चर में आता, वो सब। तो वो जा जाके वो चपरासी आता और उसको बोलता है कि अरे तुम्हारे लिए अच्छी खबर है कि वो साहब ने तय कर दिया कि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट में आता, तो चलो। उसके बाद बोलता अरे मुझे तो निकालो, तो बोलता कि नहीं नहीं ये मेरी तरफ नहीं आता, अब वो तय करेंगे कौन से साहब इसके। तो ये जो लाल फीता शाही है कि आखिरी में जब उसके बड़े कोर्ट से या किसी बड़े ऑफिस से अगर वो आ जाता है कि नहीं ये जामुन का पेड़ हटा दिया जाए इसके आंग पर से, तो तब तक मर जाता। तो एक कितनी बड़ी पीड़ा है।
सही बात है।
कृष्णचंद्र की मैं कलम का जादू बता रहा हूं आपको, तो ये कृष्णचंद्र है। तो उन्होंने ये रोना नाम का जो एक इंशाइया लिखा है, तो कौन नहीं रोता। उन्होंने ये लिखा है कि रोना एक ऐसा अमल है जो गैर इस्तरारी है, इसके लिए तय नहीं करना पड़ता कि आपको कि रोना है मुझे, रोना खुद ब खुद आ जाता है और हंसना भी खुद ब खुद आ जाता है। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो खुद ब खुद होती हैं, आप तय करके नहीं बैठते हैं कि भाई साहब मैं अभी सर से बात करूंगा तो मैं हंसूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर हंसने की बात है तो हंसेंगे। तो इस तरह से अगर कोई आप फिल्म देख रहे हैं और उसमें एक सीन आ रहा है, आप बोलेंगे कि नहीं मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन वो सीन पे अगर आप भावुक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो आपको रोना आएगा, आंसू निकल आएंगे।
सही बात।
तो उन्होंने कहा कि रोना जो है ये बिल्कुल गैर इस्तरारी फेल है, जिस पे आपका इख्तियार नहीं रहता। तो रोना जो है वो कैसे कैसे किस किस टाइप का रोना होता है, तो उन्होंने जो सबसे उसमें कॉमिक पहलू निकाला है, उन्होंने कहा कि ये रोने से काम ये होता है कि फेफड़े मजबूत होते हैं। फिर ये कि भी रोने से, क्योंकि आदमी रोता है, जब ज्यादा रो लिया तो उसके नाक में से पानी भी बहना शुरू होता है, वो उन्होंने बयान किया कि इससे नजला सर्दी जुकाम ये भाग जाता है। फिर उन्होंने कहा कि भी इससे ये और जो इसके दीगर
जो फायदे
हैं, तो इस तरह से उन्होंने मजाहिया अंदाज में, मजाकिया अंदाज में उसको बांधा है कि भी रोना जो है वो किस तरीके से मुफीद होता है। उन्होंने कहा कि भी बच्चा, बल्कि सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है।
सही बात।
तो फिर इससे रोने की अहमियत साबित हो जाती है कि जब बनाने वाले ने बनाया तो उसको रोते भी भेजा दुनिया के अंदर, और जब वो जाता है तो दूसरों को रुला कर जाता है। तो इसको ये आखिरी में ये उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर आंसू रोना, सबसे ज्यादा रोना अगर किसी का पावरफुल होता है तो वो एक बीवी का, वो एक बीवी का रोना कि वो एक बार रोकर अपने शोर से जो चाहे वो मनवा ले।
एक और डायमेंशन, जैसे कि आपने अभी कहा रोने के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कब रोए, दूसरों का दर्द देख के, दुख देख के रोए, ताकि उसको हम मदद कर सके, जिस हाल में वो पड़ा है उस हाल से उसको निकाल के। यानी जब हम देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग नजरें चुरा के भाग जाते हैं,
सही,
हमारे आंखों में आंसू नहीं आते, या कोई भूखा पड़ा है या बहुत गरीबी में जी रहा है, तो हम ये नहीं सोचते कि इसकी ये हालत कैसे मिटाई जाए, हम अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। तो रोने का ये एक डायमेंशन, मुझे जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि रोने की सच्चाई में बहुत जरूरत है। मैं कब रो के दूसरे के हाल देखकर, और खाली रोने से भी नहीं चलेगा, जब तक मैं उसकी कुछ मदद ना करूं तब तक वो भी अधूरा ही रोना हो जाएगा।
मुझे एक बात याद आ रही है सर, आपको भी पता होगी वो, कि जीना साहिल लुधियानवी का है कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, और अल्लाह के पास भी उस आंसू की ज्यादा कीमत है जो दूसरों के लिए बहा,
दूसरे के लिए बहा है। सही बात है, सही बात है।
फरिश्तों इनको अपने पास रख लो, फरिश्तों इनको अपने पास रख लो, ये आंसू और की खातिर बहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है,
अपने लिए नहीं रो रहा है, दूसरे के लिए
बहे, दूसरे के लिए रो रहा है। सही बात है।
तो ये चीज, ये रोना है।
मैं एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हमारे अगले प्रोग्राम में भी आप और जो मशहूर इंशा ये है इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को अधिक जानकारी दें। धन्यवाद
जी, बिल्कुल बिल्कुल।